कायरव एनाया से किए प्रॉमिस के मुताबिक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसे एक कॉल आया और उसने अपनी दिशा बदल दी। घर पर एनाया बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। दोपहर में मिलने और साथ में लंच पर जाने की बात हुई थी, लेकिन कायरव नहीं आया। वो कहाँ था कुछ अता पता नहीं था, यहाँ तक कि उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। देखते ही देखते घड़ी ने 4 बजा दिए। अब तो एनाया भी वेट करते करते थक चुकी थी। उसकी आंखें झिलमिला गई थी, चेहरा बिल्कुल ही उतर गया था। रूम में सन्नाटा पसरा था और उस सन्नाटे में उसकी बेचैन धड़कनों और तेज चलती सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उस सन्नाटे में फोन की रिंगटोन की आवाज गूंजी। कायरव का फोन होगा सोचकर एनाया ने हड़बड़ाते हुए फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर मानव का नाम देखकर उसका चेहरा ही उतर गया। एनाया ने बेमन से कॉल रिसीव किया। हेलो, दूसरे तरफ से मानव की परेशानी भरी आवाज आई। एना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? तेरी और नित्या की लड़ाई हो गई क्या? कहीं उसके डैड ने अपना माइंड तो चेंज नहीं कर दिया? एनाया अपनी प्रॉब्लम भूलकर अब उसके लिए परेशान हो गई। क्या उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं जब सारी बातें फाइनल हो गई हैं, तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है। तो चिंता मत कर, मैं इस बारे में कायरव से बात करूंगी। वो नित्या के डैड को समझाएगा और तुम्हारी शादी उसी दिन होगी जिस दिन फिक्स हुई थी। एनाया को लगा कि यही बात होगी। उसने खुद ही इमेजिन किया और नॉनस्टॉप बोलती चली गई। उसके अल्फाजों में हल्का गुस्सा, चिढ़ और नाराजगी साफ छलक रही थी। मानव को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। एनाया चुप हुई, तब जाकर उसने गंभीरता से कहा, मेरी और नित्या के बीच सब ठीक है। उसके डैड को हमारे रिश्ते से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी शादी उसी दिन हो रही है जिस दिन फिक्स हुई थी, इसलिए तुझे जीजू से कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानव ने एनाया की गलतफहमी दूर की। एनाया अब कन्फ्यूज़ हो गई और उलझन भरे स्वर में बोली, अगर तेरे और नित्या के बीच सब ठीक है तो तू किस प्रॉब्लम की बात कर रहा था? क्या कैफे में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, कैफे में भी सब अच्छा चल रहा है। काकी ठीक है? एनाया को जो जो लग रहा था वो सबके बारे में पूछती जा रही थी। आखिर अंदाज़ा लगाने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी? आई भी बिल्कुल ठीक है, और मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो मुझसे नहीं, तुझसे जुड़ी है। वॉट? मुझसे जुड़ी है और मुझे ही नहीं पता? एनाया चौंक गई। मानव गंभीरता से बोला, एना, सचिन भाऊ याद है तुझे? सचिन भाऊ? ये नाम एनाया के कानों में गूंजा और उससे जुड़ी अतीत की यादें उसकी आंखों के आगे किसी रील सी घूमने लगी। उसके बाबा का सचिन भाऊ के साथ उसका सौदा करने, उससे मुलाकातों, सचिन का उसके पीछे पड़ना, शादी तय होना, एक एक करके सब उसे याद आने लगा। कायरव से शादी के बाद सचिन का ख्याल तक उसके दिमाग से मिट गया था। इन 1.5-2 सालों में कभी इसका जिक्र तक नहीं हुआ, इसलिए दिमाग के जिस कोने में उससे जुड़ी यादें कैद थीं, वहां वक्त की धूल जम गई थी। लेकिन जैसे ही सचिन का जिक्र निकला, एनाया को एक बार फिर सब याद आ गया था। आज अचानक सचिन का जिक्र क्यों किया तूने? वो तो जेल में था ना? एनाया को बीती बात याद आई कि उसकी शादी के वक्त सचिन को पुलिस ने पकड़ लिया था और यही लास्ट खबर थी। उसके बाद सचिन के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया, उसे नहीं पता था और ना ही उसने कभी जानने की कोशिश की। वो जेल से छूट गया एनाया, कब कैसे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जेल से छूटते ही उसने तुम्हारे आई बाबा को ढूंढना शुरू कर दिया। शायद उसे तेरी शादी के बारे में पता चल गया। तेरे आई बाबा ने तेरा रिश्ता उसके साथ फिक्स किया था लेकिन उसे धोखा दिया। वो जेल में था, इस बात का फायदा उठाकर तेरी शादी किसी और से करवा दी। इसी गुस्से में उसने तेरे बाबा को बहुत मारा और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे अभी अभी हॉस्पिटल से तेरी सौतेली आई का फोन आया। पता नहीं उनके पास मेरा नंबर कैसे आया, लेकिन वो फोन पर बहुत रो रही थी। वो सचिन तेरी बहन को उठा ले गया है और धमकी देकर गया है कि अगर आज शाम तक तुझे उसके सामने खड़ा नहीं किया तो वो उसे मार देगा। तेरी सौतेली आई तुझसे मिलना चाहती है। मानव ने शांति से पूरी बात बताई। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ छलक रही थी। जैसे जैसे एनाया के कानों में उसके शब्द पड़ रहे थे, उसके एक्सप्रेशन बिगड़ते जा रहे थे और अंत तक आते आते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट में उसकी सांसें तेज चलने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहाने लगी। एनाया का हाथ उसके बढ़े हुए पेट पर चला गया और वो गर्दन दाएं बाएं हिलाते हुए खुद में बड़बड़ाने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किसी से मिलने। अगर मैं उनसे मिलने गई तो वो मुझे उस गुंडे के हवाले कर देंगे। अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरी जिंदगी तबाह कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। उसकी आंखों में खौफ था और आवाज़ कांप सी गई थी। उसे आगे का सोचकर ही घबराहट होने लगी थी और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। एना, मैंने तुझे इसलिए कॉल नहीं किया कि मैं तुझे वहां भेजना चाहता हूँ, बल्कि मैं बस तुझे इन्फॉर्म करना चाहता था। मैं तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाना नहीं चाहता। मानव, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। वो पागल आदमी पता नहीं गुस्से में मेरे साथ क्या कर दे। मैं अपने बच्चे की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लूंगी। पहले भी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मेरी आज़ादी, मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी का सौदा किया था। फिर से मैं उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। वैसे भी मेरा अब उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने चंद पैसों के लिए मेरा सौदा कायरव से कर दिया था। मुझसे सभी रिश्ते खत्म कर दिए थे। अब उन्हें जो करना है करे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरी शादी कायरव से हो गई है और अब मैं किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। एनाया ने फैसला सुनाया था, हालांकि अभी भी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, साथ ही अजीब सी दृढ़ता भी थी। एनाया, तू डर मत। अब सचिन या तेरे आई बाबा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तू नहीं जाना चाहती तो कोई तुझे फोर्स नहीं करेगा। बस तू शांत हो जा। इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस तेरे और तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है।
इनाया ने अपनी हथेली से अपने चेहरे पर झिलमिलाती पसीने की बूंदों को पोंछा और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने बेचैन दिल को शांत करने लगी। कुछ देर बाद जब इनाया थोड़ी शांत हो गई, तब मानव ने उससे पूछा, इनाया, मैंने सुना तेरे बाबा की कंडीशन बहुत सीरियस है, शायद वो बच ना सके। क्या तू आखिरी बार उनसे मिलने भी नहीं जाएगी? वो झूठ बोल रही होगी ताकि मुझे वहां आने पर मजबूर कर सके। नहीं इनाया, वो झूठ नहीं बोल रही। सचिन बहुत ज्यादा गुस्सा था, तेरे बाबा ने उसके साथ धोखेबाजी की, इसलिए उसने उन्हें पहले ढूंढा फिर बहुत मारा। मैंने फोन पर डॉक्टर की बात सुनी थी, उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, सर फटने की वजह से बहुत ब्लड लॉस हुआ है, बचने के चांसेस बहुत कम है। इनाया का दिल अजीब सा हो गया। उस शख्स ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना था, कभी प्यार नहीं दिया था, उल्टा शुरू से बस उसे जलील करता आया था, उसका इस्तेमाल करता आया था, अपने लालच और नशे जुए की लत के लिए उसका सौदा तक कर दिया था, चंद पैसों के लिए उसे एक गुंडे के हाथों बेच दिया था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि निर्जीव वस्तु हो। कहने को वो बाप बेटी थे, लेकिन उनके रिश्ते में ना प्यार था और ना ही लगाव। लेकिन आज जब उनके बारे में वो ऐसी बातें सुन रही थी, तो पता नहीं क्यों दिल अजीब सा हो रहा था। मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मुझे तुझे बताना चाहिए, तेरी जिंदगी से जुड़ी इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाना ठीक नहीं होगा, बस इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। अगर तू नहीं मिलना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू टेंशन मत ले और रेस्ट कर। वैसे मैंने सुना है कि पुलिस सचिन को ढूंढ रही है, शायद जल्दी ही वो पकड़ा जाए।
इनाया ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप्पी साधे बैठी मानव की कही बातों के बारे में सोचने लगी। दिल ने कहा कि उसे जाकर उनसे मिलना चाहिए, आखिर वो जैसे भी हैं तो उसके बाबा। लेकिन दिमाग ने तुरंत ही उसे डपट दिया कि क्या उन्होंने कभी उसे अपनी बेटी माना? कोई जरूरत नहीं उसे ऐसे आदमी से मिलने जाने की जिसकी नज़रों में उसका कोई वजूद ही नहीं था, जिसने पहले उसकी आई को मरने पर मजबूर किया और उसके बाद उसकी जिंदगी बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ देर की खामोशी के बाद इनाया ने जो कहा उसे सुनकर मानव हैरान रह गया। टू बी कंटिन्यूड।